सत्संग जी, प्रेम से कहना, सत्संगत आज यहाँ सहारनपुर में आकर आप सभी के इस विशाल रूप में दर्शन करके बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। और जैसे अभी जिक्र हुआ कि करीब करीब 4 बरस के बाद ऐसा अवसर, ये मौका बना है जब सहारनपुर में इस रूप में सत्संग करने का एक अवसर बना है। और बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है, जैसा कि जहाँ जहाँ पर भी जाकर ऐसी ही लगन, श्रद्धा, भक्ति भावना देखने को मिलती है। अभी चंद रोज़ पहले ही उत्तर प्रदेश के वाराणसी, इलाहाबाद, बांदा, कानपुर 18 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक, जबकि दिल्ली लौटना हुआ 22 देर रात, और फिर 24 तारीख को सभी जानते हैं कि मानव एकता दिवस का रूप में जो समागम दिल्ली में जो विशाल आयोजन होता है, बाबा गुरबचन सिंह जी की मानवता को देन और महान बलिदान, उसको समर्पित होकर अपने श्रद्धा सुमन सभी समर्पित करते हैं। इसी मानवता को मजबूत करने के लिए अपने और बढ़ चढ़कर योगदान देने की जो प्रेरणाएं मिलती हैं, और उसके बाद एक दिन ही दिल्ली के में रहने के बाद कल ही शाम को मसूरी, और अभी यहाँ आपके पास पिछली यात्रा जो 21 तारीख कानपुर में समागम हुआ, उससे पहले जितने भी वाराणसी हो या इलाहाबाद हो या बांदा हो, सारे ही इतने व्यापक रूप वाले थे। और वहाँ पर दास ने जिक्र यही किया कि ऐसे ही लग रहा है कि जैसे उत्तर प्रदेश का समागम हो रहा है, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश का प्रांतीय संत समागम नहीं हो पाया जो अक्सर मार्च के महीने में संपन्न होता है, तो अब की बार हरियाणा और राजस्थान का समागम तो हो पाया मार्च के महीने में, लेकिन उत्तर प्रदेश का समागम नहीं हो पाया। तो चारों ही प्रोग्राम जो किए गए, तो ऐसे ही लग रहा था कि शहर तो बदल रहे हैं लेकिन सारे ही समागम का रूप बने थे। और कानपुर में जब आखिरी प्रोग्राम था तो यही सोचा कि अब अप्रैल के महीने में कहीं और उत्तर प्रदेश जाने का मौका नहीं बनेगा, लेकिन सहज में ही पिछले वीरवार को ही ऐसा ही ध्यान ये चंद रोज़ पहले ही में बना अभी ही, और चंद 2-3 रोज़ पहले ही, और फिर से यहाँ पर ऐसा ही व्यापक रूप जो लड़ी वाराणसी से शुरू हुई थी, जो सोचा था कि कानपुर में संपन्न हो गई, लेकिन यहाँ पर सहारनपुर में वैसा ही एक समागम का विशाल रूप बना है। तो ये आप सभी की लगन है जो मानवता, इंसानियत के लिए दिन रात भक्त जन ये प्रयास करते आ रहे हैं, जो वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने युगों युगों से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर युग में, हर दौर में जो इंसान को ये जागृति देने के प्रयास किए, जो गफलत की नींद में अक्सर सोए रहकर इस समोलक जन्म को व्यर्थ में गंवाते चले गए हैं, लेकिन गुरु, पीर, पैगंबर, भक्त जन, संत जन, वो इस संसार के ऊपर ये परोपकार करते आए हैं, संसार का उद्धार करने के लिए जन जन तक ये संदेश पहुंचाते आए हैं, झिझोड़ते आए हैं इंसान को जो इतनी गहरी गफलत की निद्रा में सोए रहते हैं, और अपना अमोलक जन्म यूं ही व्यर्थ गंवा रहे होते हैं। तो इसलिए महापुरुषों के योगदान ये बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। ये एक ऐसे जल के समान जो कि अग्नि को शांत करते हैं, ये उस रोशनी के समान जो अंधकार को समाप्त करते हैं, एक चंदन के समान जो दुर्गंध फैले हुए संसार में उसमें महक स्थापित करने के लिए, ऐसे गुण होते हैं एक संतों भक्तों के जीवन में, वही एक संसार के लिए वरदान माने जाते हैं। तो आज भी यही जतन यही प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि संसार के इंसान का गिरता हुआ म्यार ये हम लगातार देख रहे हैं। जहाँ पर मानवता स्थापित करने के लिए जतन हो रहे हैं, वहाँ पर मानवता से गिरकर दानवता की भावनाओं से युक्त होकर और वैसी ही चाल चलने वाले हमें चारों दिशाओं में देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पर इंसान इस कदर गिरता चला जा रहा है, कुछ सिक्कों के लिए, कुछ दौलत के लिए, कुछ प्रलोभन को पूरा करने के लिए, कुछ लालसाओं की पूर्ति के लिए, कहीं पर जाति के नाम पर, कहीं पर मज़हब के नाम पर, कहीं पर भाषाओं संस्कृतियों के नाम पर, कहीं पर राजनीति के खेल खेलते हुए, तो अक्सर हम देखते हैं कि दरिंदगी के रास्ते पे चलते चले जाते हैं। लेकिन भक्त संत गुरु पीर पैगंबर वो इस इंसान को इंसानियत में स्थापित करने के योगदान देते आ रहे हैं, एक बंदे में एक ऐसी, जिससे जैसे अवतार वाणी में भी हम पढ़ते हैं कि बंदे विच बंदगी दा घाटा होवे ता इंसान नहीं, कि जो सही मायनों में बंदगी की कमी है, जो बंदगी यानी कि सत्य के ऊपर आधारित है, जो सत्य से नाता जोड़कर बंदगी जो आरंभ होती है, जो सही मायनों में इंसानों की कदर हमें पैदा करती है हमारे मनों में, बिला मज़हब जाति भाषाओं का लिहाज किए हुए केवल एक उस दृष्टि से हमें देखना सिखाती है, तो वो जो कमी है, उस कमी के रहते हुए हम इंसान नहीं कहला पाते हैं। तो इस कारण ये माना जाता है कि वो हमारी बंदगी भी बंदगी नहीं है। तो इसलिए ये कमी जो है जीवन में, इस सत्य से नाता तोड़कर जो जीवन जी रहे हैं, इस सत्य को अंग संग जाने बगैर जो जीवन के सफ़र को तय कर रहे हैं, इस रंग में रंगे बगैर जो हम दुनियावी रंगों की परतें और परतें चढ़ा चढ़ा कर अपने इस जीवन के सफ़र को तय कर रहे हैं, भ्रम और भ्रांतियों के अंबार अपने सर पे उठाए हुए हम इस जीवन के सफ़र को तय कर रहे हैं, इसी बोझ में ही हम ये अमोलक समय गंवा कर चले जाते हैं जो सुनहरी अवसर के रूप में देखा गया। किसी को भी किसी रूप में कोई अवसर मिले दुनियावी दृष्टि से भी, अगर वो अवसर वो मौका हाथों से चला जाए तो पश्चाते हैं, पश्चाताप होता है कि मौका मिला भी था लेकिन उसका लाभ नहीं मैं उठा पाया। और बाकी भी यही कहते हैं कि इसको कितना मौका मिला था लेकिन ये ऐसा नादान रहा, ये ऐसी लापरवाही करता रहा कि उस मौके का इसने लाभ नहीं उठाया है। इसलिए जो प्राप्त हो सकता था, जिस मुकाम तक पहुंच सकता था, वो इसके हिस्से में नहीं आई, इससे बड़ा मंदभागा कौन होगा। तो इस प्रकार से ये संत महात्मा भक्तजन यही चाहते हैं कि इंसान को जन्म मिला इंसानी, ये बंदे वाला ये मनुष्य तन में आया है तो ये भाग्य की बात है, क्योंकि इसको अवसर के रूप में देखा जाता है कि इसको अवसर मिला है। और सोचने समझने की ताकत जो अन्य योनियों में नहीं है वो इसको दी गई है। बस ये दो लिहाज से इसको इसके जन्म को अमोलक कहा जाता है कि एक तो ये इसको अवसर अपनी आत्मा का कल्याण कर पाए, और साथ ही साथ जो सोचने समझने की ताकत दी के इसको एहसास हो कि केवल दुनियावी ही काम ही सब कुछ नहीं है, केवल वही दौड़ दौड़ते हुए मैंने इस अमोलक जन्म की कीमत नहीं डालनी है, मेरे जन्म की कीमत पड़ेगी जब मैं ये सच्ची दौलत है इसकी प्राप्ति करूं। तो ये जो सोच मन में आ जाए, ये समझ सकें और फिर इस तरफ कदम बढ़ा लें, और फिर ब्रह्म ज्ञानियों का संग करके इस परमात्मा का बोध हासिल करके आत्मा के जन्मों जन्मों के भ्रम और बंधन को काटकर एक मोक्ष और मुक्ति के पात्र बना दें इस आत्मा को, तो फिर इस लिहाज से कहा जाता है कि वाकई ये भाग्य की बात के जन्म मिला और पूर्ण भाग्य माने गए जब इसने वो काम भी कर लिया जिस कारण ये जन्म मिला था, जिस कारण अन्य योनियों में से अधिक गुण इसको दिए गए थे सोचने समझने बुद्धि वाले, उसका इसने सही इस्तेमाल किया है। इसलिए इसने उस जन्म लेने की बात को वो पूर्णता दे दी, उसको उस मुकाम तक ले आया जिसके कारण ये मान लिया गया कि वाकई ही ये जीवन व्यर्थ नहीं गया है। लेकिन संसार में जब नज़र घुमाकर देखते हैं तो व्यर्थ ही गंवाते चले जा रहे हैं। अभी यूपी के यात्रा के दौरान ही दास ने एक आध स्थान पर जिक्र किया, अक्सर हम देखते हैं गलियों में या फिर कहीं घरों में अगर नलका खुला हुआ है, पानी बह रहा है, अब पानी बह रहा है, नीचे कोई बाल्टी नहीं है, कुछ और नहीं है, अगर गली में जा रहे हैं तब भी कहीं पर पाइप फटी होती है, पानी बहता चला जाता है और हम कहते हैं कि उधर तो किसी को पानी पीने को नसीब नहीं हो रहा और यहाँ पर ये बेकार में वेस्ट जा रहा है पानी, इसका कोई उपयोग नहीं, ये गंदी नाली में बह जाएगा, इसका कोई भी लाभ नहीं उठाया जा रहा, कीचड़ पैदा कर रहा है। लेकिन उसी बहते हुए पानी को कहीं बाल्टी में टब में भरकर हम उससे कितना कितना लाभ ले लेते हैं, उसको चैनलाइज कर लेते हैं, लाभ प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसे वो नलका ऐसे ही बहता चले जा रहा है, उसका जल पूरा ही वेस्ट हो रहा है, इसी प्रकार से इंसान भी यही कुछ करते आ रहे हैं कि इसका लाभ नहीं उठाते हैं। जिन्नी कमी नाई गुण से कमड़े विसार, मत शर्मिंदा थी वही साईं दे दरबार, कि जिन कामों में कोई गुण नहीं है और उन्हीं कामों को तो किए चले जा रहा है, वही प्रवृत्ति वही फितरतों को मजबूती से अपनाए हुए हैं, उससे अपना पल्ला छुड़ा नहीं रहा है और इस मंजिल मकसूद को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जिन्नी कमी नाई गुण से कमड़े विसार, जिन कामों की कोई कीमत नहीं है, उल्टा वो तुझे नीचे ले जाने वाले हैं, वो तेरे लिए पिछड़ने का कारण बनने वाले हैं, जो तेरे लिए पतन का कारण बनने वाले हैं, जिसके कारण ना लोक सवरेगा ना परलोक सुहेला होगा, और उन्हीं को तू तरजीह देता है इतनी कि सारी उम्र बिता देता है, एक बालपन की अवस्था से लेकर जितनी भी यात्रा तक तू कहता है करते हुए जिस उम्र के उस पड़ाव तक पहुंचा है, तो उस तमाम तूने उम्र पर व्यतीत कर दी। जैसे वो पंक्तियाँ के पांच बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो मगर 25 माया कारण, देश विदेश गयो 30 बरस की जमती उपजी, नित नित लोभ नयो, माया जोरी लाख करोरी, अब हुना तृप्त भयो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। कि इस प्रकार से ये यात्रा कहाँ से आरंभ हुई और इस यात्रा को तय करते हुए इंसान तूने जिसका खरीदार होना चाहिए था, जैसे थोड़ी देर पहले भी आपने वो शेर सुना जो मंच से गीत कविता व्याख्यान के रूप में जो संदेश दिया गया, तो उसमें यही कहा जा रहा था कि इस संसार रूपी बाजार में से गुजरते हैं हम, अक्सर हम संसार के ही खरीदार बनकर रह जाते हैं, लेकिन इसी संसार में एक अमोलक वस्तु भी है जिसके खरीदार अगर बन जाएं तो वाकई हम मालामाल हो जाते हैं। इसीलिए कबीर जी ने कहा कि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोए, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होए, कि वाकई धनवान जिसके कारण हो सकते हैं, जो खरीदने लायक है, जो अपनाने लायक है, उसको नहीं अपनाते हैं। हालांकि पूजा अर्चना भी होती है, परमात्मा के नाम का उच्चारण भी होता है, नाना क्रियाएं यात्राएं भी होती हैं, स्नान भी होते हैं, ये क्रियाएं तो लगातार हो रही हैं, लेकिन ये हो रही हैं इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा से भी जुड़ गए हैं, परमात्मा का बोध भी हो गया है, परमात्मा को अपना भी लिया गया है। अगर वाकई ये सब यही प्रमाणित करता कि ये सच्चे धन की प्राप्ति की इच्छा भी है और इसकी प्राप्ति हो भी गई है, ये फिर भगवान कृष्ण को ना कहना पड़ता कि होने को भक्त तो मेरे बथेरे हैं जो मेरा नाम लेते हैं, जो मेरी जय जयकार बुलाते हैं, लेकिन अक्सर ज़्यादा तादाद उनकी है जो आर्त भक्त या अर्थार्थी भक्त हैं, या तो भय के कारण मेरा नाम लेते हैं या दुनियावी उपलब्धियों के लिए मेरी पूजा अर्चना और धर्म स्थानों पर हाजिरी भरते हैं। ज़्यादा तादाद उनकी बताई, जो सबसे उत्तम श्रेणी वाले वो ज्ञानी भक्त जो उन्होंने बताए, जिज्ञासु भक्त से भी ऊपर, तो उस तरफ इंसान कम निकलते हैं। सब कुछ करते हैं, पठन पाठन भी करते हैं, लेकिन वही हमें मंजिल तक पहुंचा दे। अगर यही संभव होता तो फिर अभी भी काशी नगरी में, यानी कि वाराणसी में से होकर आए हैं, वहीं कबीर जी ने वहीं सामने ही तट पर, गंगा के तट पर लोगों को यही कहा था, जो वो सब कुछ कर रहे थे उन्होंने यही कहा था कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान, तू कहे कागज़ की लेखी, मैं कहूँ आंखन की देखी। तो इस प्रकार से वही कबीर जी के वचन साबित कर रहे हैं कि वो पढ़ना पढ़ाना अपनी जगह पर है, वो जिक्र करना अपनी जगह पर है, वो क्रियाएं करना अपनी जगह पर है, लेकिन प्राप्ति कुछ और है। एक बूझना जानना ये कुछ और है, एक बोध हासिल करना ये कुछ और अवस्था है, ये पढ़ने सुनने से ऊपर है, ये यात्राओं से ऊपर है। मकसद तो यही है कि इसका बोध हासिल करना है। अभी भी ही आप जानते हैं कि गुड फ्राइडे जो पीछे ही शुक्रवार को, जबकि हज़रत ईसा मसीह जी को सूली पे लटकाया गया, जब उनके हाथ पांव में कीले गाड़े गए, सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, इस प्रकार की दरिंदगी के प्रमाण उस वक़्त के हाकिमों ने और उस वक़्त के ऐसे शरा के लोगों ने, मुतसबियों ने दिया था, तो उन्होंने भी तो यही संदेश दिया था कि परमात्मा का नाम, पूजा अर्चना और दिनों को तो मनाते हो, लेकिन अपने परमात्मा को, इस ईश्वर को जानते नहीं हो। इसीलिए उन्होंने कहा कि नो गॉड ये वर्शिप, कि जानो ऐसे परमात्मा को, लेकिन अज्ञानता में रहने वाले इंसान वो कहाँ पर इस बात को पकड़ें। और इसलिए वो राह दिखाने वालों को भी कुराइया कहते रहे और उनके ऊपर भी जुल्म ढाते रहे। ये लगातार हर युग में ऐसे सिलसिले होते आए हैं। तो दास जो बात कह रहा था कि उनका संदेश और पैगाम तो केवल यही था कि इंसान इस परमात्मा का बोध हासिल कर लो, नो गॉड ये वर्शिप, कि जानो इस परमात्मा को, बिनु जाने हो ही नहीं पड़ती थी, जाने बगैर ये बात बनने वाली नहीं है, पहले ये ट्रू नॉलेज हासिल करो, देन यू विल गेट द रियलाइजेशन, एंड व्हेन यू गेट द रियलाइजेशन यू विल बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दिस गॉड ऑलमाइटी इज ओमनी प्रेजेंट whom you have been mentioning by various names, and also you will be now aware after realization, and that realization took place after the knowledge you got that all humankind is the member of my family. To is prakar se fir tumhare man mein kisi ke prati vair irsha nafrat ka bhav nahi rahega, yani ki ek hi baat se do baatein ban gayi, आत्मा का भी कल्याण हो गया और तेरे मन में भी जो दानवता स्थापित थी, जो भ्रम और भ्रांतियाँ स्थापित थी इससे भी निजात मिल गई, आत्मा को आवागमन से निजात मिल गई, और इस मन में भी ये जागृति आई, ये उजाला आया। तो इसके कारण मन ने ही जो दीवारें खड़ी की हुई थी उनको गिराने में ये सहायता मिल गई। तो एक ही प्राप्ति से, जैसे गुरबाणी में भी हम पढ़ते हैं कि सर्व रोग का औखद नाम, कि ऐसे रोग जो हमारी आत्मा मन सबको लगे हुए हैं इसकी औषधि एक ही बताई है, यही परमात्मा, यही निराकार, यही अकाल पुरख, यही अल्लाह, यही राम, इसका बोध हासिल कर लेना यही औषधि बन जाती है। तो इस प्रकार से ये प्राप्ति इसने उज्ज्वल कर दिया। जैसे वो एक दीपक की मिसाल दास देता है कि एक दीप बाहर के स्वागत तुम्हारा हो, एक दीप अंदर, एक दीप अंदर के स्वागत तुम्हारा हो, एक दीप चौराहे पर जो सबका सहारा हो। इस प्रकार से ये एक ही दीपक से किस प्रकार से अपना भी अंतर रोशन हो गया, और चौराहे पर रखा तो बाकियों का भी उसको लाभ प्राप्त हुआ। यही दीपक जला तो स्वागत तुम्हारा हो, जो आया है वो भी उसी रोशनी को देखकर करीब आ रहा है। तो इस प्रकार से एक ही दीपक जलने से उसके कितने कितने परिणाम निकले। इसी प्रकार से ये ज्ञान की लौ जगी, ये प्राप्ति हुई तो आत्मा भी रोशन हो गई, ये मन भी रोशन हो गया, और इस प्रकार से हम सही लाभ को पाने वाले बन गए, और हमने अपना मुख उजला कर लिया, इस जन्म को सफल कर लिया, और इस प्रकार से संसार को भी फिर यही एक संदेश दिए कि हे इंसानों, तुम भी ये कदम उठाओ, तुम भी इस राह में भटकते ना रहो, तुम भी केवल संसारिक खेल ना खेलते रहो। ये जो खेल खेलते हुए इतना करते भी चले जाते हो जतन, लेकिन अंततः ये उपलब्धियां हो जाने के बाद भी उसके बाद क्या है, क्योंकि ये तो साथ कुछ जाता नहीं है, ना ये विद्याएं तुम्हें, ना ये दौलतें तुम्हें, ना ये हुकूमतें तुम्हें तुम्हारी आत्मा का उद्धार करने के में सहायक सिद्ध होंगी, कुछ भी ये साधन नहीं काम आने वाले हैं, यानी कि यहीं के यहीं रह जाने वाले हैं। और जिस शरीर को इन सब में उलझाए हुए हो, ये शरीर भी बहुत जतन कर काया पाली, चलती बार अगन संग जाली, कि जिस काया को भी इतनी संभाल इसकी की, इसका पोषण किया, और इसको पता नहीं क्या क्या नई साधन दिए, लेकिन ये खुद ये भी नहीं रहा। तो इस प्रकार से जो दिसे सो सगल विनाशे, कि जो नज़ारे देख रहा है उसका लुत्फ लेता है, लेकिन वो नज़ारे भी नहीं रहते, और तेरी आंखें जो नज़ारे ले रही हैं ये आंखें भी नहीं रहनी, यानी कि खाक का पुतला खाक की ढेरी में तब्दील हो जाता है। तो ये संसारिक सिलसिलों की बात करें तो यही फैसले हैं, और ये केवल फैसले नहीं हैं, ये हकीकत है, क्योंकि संतों महात्माओं के फैसले वो सच्चाई के ऊपर आधारित होते हैं, वो केवल तसव्वुर और ख्याली बातों के ऊपर आधारित नहीं है, वो सत्य के ऊपर आधारित हैं। इसलिए उन्होंने फैसले दिए कि सत्य यही है, लेकिन अनदेखी करें सत्य की, आंखें मूंद लें और उससे हमारा बचाव हो जाएगा। जैसे वो भी मिसाल दी जाती है कि कबूतर को कहा गया कि बिल्ला सामने आ रहा है, अपना बचाव कर ले। कहने लगा, हाँ मैं बचाव कर लूँगा, मुझे पता है। कैसे करोगे? कहता, मैं आंखें बंद कर लूँगा, आंखें बंद कर लूँगा। आंखें तो तूने बंद कर ली, बिल्ले ने तो नहीं की, वो तो कर लेगा काम तेरा तमाम। तो इस प्रकार से सत्य की अनदेखी करेगा तो नुकसान तो तेरा ही होने वाला है। गुरु पीर पैगंबरों ने जो उपकार किए, जो जागृति दी, वो किस लिए? कि हमारा ही लाभ था। इसलिए इंसानों का उद्धार करने के लिए उन्होंने ये योगदान दिए और उसके लिए कितने कितने बलिदान दे डाले। ये पीड़ा थी उनके मन में, क्योंकि जानते थे कि इंसान अगर यही चाल चलता रहा, यही अज्ञानता बनी रही, तो बहुत घाटे का सौदा ये कर रहा है, इसको भी एहसास नहीं है। तो ये पीड़ा है, जैसे माता पिता भी होते हैं, अगर बच्चे को देखते हैं कि वो जा रहा है किसी गलत दिशा की तरफ, या फिर बच्चा बिल्कुल ना समझ रेंग रहा है और बढ़ रहा है किसी अंगीठी की तरफ, कहीं उबलता हुआ पानी पड़ा हुआ है उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो किस तरह से वो, ये नहीं कि हाथ तो इसका जलेगा मुझे क्या लेना देना है, लेकिन क्योंकि बच्चा है, पीड़ा है, ममता है, वो कहाँ पर उनके कदम रुक सकते हैं, वो नहीं रुकते कदम, एकदम से झपट कर जाएंगे कि आग में हाथ ना डाल लें। इसी प्रकार से गुरु पीर पैगंबर संत जन भी सबको अपना जानते हैं, इसलिए जब देखते हैं कि ये क्यों अपना जन्म व्यर्थ गंवा रहे हैं, ये क्यों अब मानवता का दामन छोड़कर जीवन जी रहे हैं, ये क्यों कलंकित कर रहे हैं मानव जाति को, इसलिए इतना इतना अपने ऊपर लेकर भी, बर्दाश्त करके भी, बलिदान देकर भी, इस तरह सी कीमत चुकाई ताकि भला हो जाए इंसान का। ये इसी देन को हम देखते हैं जो बाबा गुरुबचन सिंह जी ने दी, या फिर वलियों पीरों पैगंबरों के इतिहास के पन्नों में जो जिक्र हैं, केवल यही पीड़ा कि सच्चे धर्म को जान जाएं, कि धर्म की परिभाषा क्या है, ये मानवीय गुणों से युक्त हो जाएं, मानवीय मूल्यों से युक्त हो जाएं, ये दीवारें बना बना कर मातम फैलाते जा रहे हैं, परमात्मा एक है तो क्यों इसके नाम पर झगड़ते हैं, क्यों मजो मिल्लत की दीवारें खड़ी करते हैं, क्यों जाति पाति की दीवारें खड़ी करते हैं, क्यों ये सारे वातावरण को एक हिंसा वाला और विषैला बनाते हैं, क्यों ये दूरियां हैं एक दूसरे के दरमियान। तो ये मन में पीड़ा लिए हुए ही सब ने ये संदेश और ये पैगाम दिए और ये योगदान दिए, तो आज भी उसी भाव से युक्त होकर ही ऐसे संदेश और ऐसे पैगाम ही केवल नहीं दिए जा रहे हैं, वहाँ पर ऐसे प्रयास भी किए जा रहे हैं, और इसी भाव से युक्त होकर ये आयोजन भी होते हैं जो समागमों के और सत्संग के, ताकि किसी के मन में ये बात बैठ जाए। जैसे बीज भी ज़मीन में डाले जाते हैं और इसी भाव से डाले जाते हैं कि तमाम बीजों में से फसल या दाने प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि सारे दाने ही, उन सारे ही सारे बीज में से हमें वो फसल का हिस्सा बन पाए, कई यूं ही व्यर्थ चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि कुछ व्यर्थ चले जाते हैं तो किसान ये नहीं कि बीज डालना ही छोड़ देता है, इसी प्रकार से ये परोपकार तो होते चले आए हैं और कभी भी परोपकारी संत अपने कदमों को रोकते नहीं हैं, चाहे कोई भी हालात हो, कोई भी स्थितियां हो, लेकिन वो ये योगदान देते चले जाते हैं। और इस प्रकार से ये परोपकारी हृदय जो होते हैं, ये संसार के इंसानों से कई महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि संसार के हृदय अक्सर खुदगर्जियों वाले होते हैं जो केवल और केवल अपना सोचते हैं, लेकिन परोपकार शब्द ही अपने आप में कि ये अपने से ज़्यादा दूसरों का सोचते हैं, और यही देन रही है संतों की, वलियों पीरों पैगंबरों की, महात्माओं की। तो दास और अधिक शब्दों का इस्तेमाल किए बगैर अंत में यही अरदास करेगा कि दातार कृपा करे, सबको सुमति दे, सबको एहसास बख्शे, सबको जागृति दे, ताकि सभी अपने इस जन्म को सफल कर पाएं, इस सत्य से नाता जोड़ लें, इस सत्य की प्राप्ति कर लें, और जिनको प्राप्त हुआ है वो इसी ज्ञान की रोशनी में अपने जीवन के कदमों को धरते चले जाएं, इसी ज्ञान की दृष्टि से ही देखते चले जाएं, और इसी के अंतर्गत ही अपने भाव बनाकर आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। तो दास इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। सत्संग जी धन।
सत्संग जी इसी प्रकार से सभी बैठे रहें राहुल जी के साथ मिलकर सिमरन में साथ।